नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से लाया गया संविधान 131वां संशोधन विधेयक सदन में पारित नहीं हो सका। लोकसभा में उपस्थित कुल 528 सदस्यों में से विधेयक को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। विधेयक पर मतदान के दौरान 298 सांसदों ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान के परिणाम की घोषित करते हुए कहा कि विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण इसे आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक सहित अन्य दो विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें पारित करने के लिए पेश नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का अवसर गंवाने का आरोप लगाया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। श्री शाह ने कहा कि इस परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा की सीटों में वृद्धि का प्रावधान है।
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की अभी स्ट्रेंथ है 129, 23.76%। अब 50% वृद्धि कर जब ये पांचों राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं, 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत 23.87 आए।
वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक नहीं है और इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है।
द फर्स्ट ट्रूथ,
सच तो ये है कि ये कोई महिला सशक्तिकरण विधेयक नहीं है। इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। एक महिला सशक्तिकरण विधेयक इसी सदन ने वर्ष 2023 में पारित किया था। ये विधेयक तो भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का एक प्रयास है।
एंड हाइडिंग बिहाइंड इंडियाज वुमेन।
कोयला मंत्रालय ने मुंबई में आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला विषय पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस दौरान वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 15वें चरण का शुभारंभ भी किया गया। कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने नीलामी के इस चरण का औपचारिक शुभारंभ करते हुए कहा कि वर्ष 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके तथा घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार करके एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्शी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खुल गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अराग्शी ने कहा कि इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम के अनुरूप जलडमरू मध्य पूरी तरह से खोल दिया गया है। अमेरिका ने इराक में अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं पर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के 7 वरिष्ठ कमांडरों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें कटाइब हिजबुल्ला और असाइब अहल अल हक जैसे समूह शामिल हैं। ये कार्रवाई ईरान के सहयोगी नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए केवल सैन्य बल ही नहीं बल्कि आर्थिक दबाव का उपयोग करने की अमेरिकी रणनीति को भी दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से वार्ता करेंगे। श्री राधाकृष्णन की श्रीलंका की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। वर्ष 2026 की हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। जायरीन का पहला जत्था देश भर के विभिन्न स्थानों से सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि 1,75,000 से अधिक जायरीन के भारत से हज यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मंत्रालय ने जायरीन के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस वर्ष कई नई पहल की हैं। डरबन में महिला T20 क्रिकेट के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया। वहीं IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 3 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। वहीं हैदराबाद में शाम 7 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।